हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रिदांश ने धीरे से सर्द आवाज में कहा, ओपन योर आईज। आर्ना ने रिदांश की बात सुनकर अपनी आंखें और कसकर भींच ली। ये देखकर रिदांश ने अपनी बाहों की पकड़ आर्ना पर और टाइट कर ली, जिसकी वजह से आर्ना और रिदांश के बीच अब एक इंच का भी फासला नहीं बचा था। रिदांश ने पूछा, तुम खुद अपनी आंखें खोलोगी या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हारी आंखें खुलवाऊं? रिदांश की बात सुनकर आर्ना ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और एक मिलीसेकंड के लिए उसकी तरफ देखकर फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं। लेकिन अगले ही पल रिदांश का सवाल सुनकर वो हैरान रह गई। रिदांश ने सख्ती से पूछा, कहाँ गया था आयुष आज? और अगर अगले 2 सेकंड में तुमने इसका सच सच जवाब नहीं दिया तो फिर इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना वाइफी। आर्ना घबराते हुए बोली, वो नैना आई थी आज यहाँ और उसको जाते वक्त काफ़ी देर हो गई थी और कोई साथ जाने के लिए नहीं था, तो मैंने ही आयुष जी को बोला कि वो नैना को छोड़ आए। इसमें आयुष जी की कोई भी गलती नहीं थी, पर आई स्वेयर मुझे भी आपकी मॉम के बारे में बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं कभी भी आयुष जी को नैना के साथ नहीं भेजती। रिदांश ने सख्त भाव से कहा, बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से लाइफ में पहली बार मेरे छोटे भाई ने मुझसे झूठ कहा। इसीलिए एक बात मेरी अपने कान और दिमाग दोनों खोलकर सुन लो, मेरी पर्सनल लाइफ और फैमिली दोनों से जितना हो सके उतना दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम्हारी इस जिंदगी को जीते जी नर्क बना दूंगा मैं। रिदांश ने आर्ना को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, नाउ गेट आउट ऑफ माई वे। इतना कहकर रिदांश ने लाइट ऑफ करते हुए सोने के लिए बेड पर जाकर लेट गया। आर्ना चुपचाप जमीन पर गिरे अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ पड़ गई। कुछ देर बाद आर्ना भी कपड़े बदलकर अपनी जगह पर आकर लेट गई, लेकिन उसके दिमाग में आज हुई सारी बातें और वाकया ही घूम रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो सो नहीं पा रही थी कि तभी कोई नोटिफिकेशन आने से उसके फोन की लाइट ऑन हुई। उसने फोन उठाकर चेक किया तो एक बार फिर सुबह वाले अनजान नंबर से ही मैसेज था, जिसके बारे में वो आज की बातों के चलते लगभग भूल ही चुकी थी। आर्ना एक पल के लिए सोए हुए रिदांश की तरफ देखती है और फिर वो फोन में आए मैसेज को खोलती है। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? ये एक बात हर लम्हा मेरा चैन और सुकून बर्बाद किए हुए रहती है। मैं ही जानता हूँ कि आखिर कैसे मैं तुम्हारा उस रिदांश अग्निहोत्री के घर और कमरे में रहने की बात को टॉलरेट कर पा रहा हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूँ, लेकिन जितनी तकलीफ और दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस कि इससे 10 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत मैं उस रिदांश अग्निहोत्री को दूंगा, और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, योर डेस्टिनी। आर्ना ने परेशान होते हुए अपने मन में सोचा, आखिर कौन है ये शख्स और क्यों बार बार ये खुद को मेरी डेस्टिनी बता रहा है? क्या ये वही शख्स है जो मुझे न्यू ईयर ईव पर मिला था और जिसे मैंने अपना वहम समझा था? लेकिन अगर ये वही भी है तो भी मैं इसे नहीं जानती, और आखिर उसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? यही सब सोचते सोचते कब आर्ना की नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह से ही एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो चुका था। रिदांश जिम करके नहाने और फ्रेश होने के बाद अपनी माँ के लिए नाश्ता लेकर जाता है, जो कि ये उसका हर रोज का काम था और जिसके बारे में आर्ना को भी प्रीशा और समांथा से आज ही पता चला था। नाश्ते का टाइम होते होते रिदांश सबके बीच टेबल पर आ चुका था। आर्ना भी अपनी जगह बैठ गई थी और रिदांश सबके साथ ही समांथा को आर्ना को भी नाश्ता परोसने के लिए कहता है, जिसे सुनकर आर्ना को हैरानी भी हुई कि अचानक रिदांश को उसकी चिंता कैसे सताने लगी। लेकिन फिर भी आर्ना ने अपने भाव सामान्य ही बनाए हुए थे। मगर अगले ही पल जब समांथा उसे नाश्ता परोसती है तो उसे सारी बात पल में समझ आ जाती है। समांथा ने आर्ना को नाश्ते में करेले परोसे थे, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और ये बात रिदांश ने उससे मालूम भी की थी, लेकिन तब वो रिदांश के इस बात को पूछने का मकसद समझ नहीं पाई थी। आर्ना मुंह बनाकर अपनी प्लेट को देख रही थी, क्योंकि उसे करेले सबसे ज्यादा नापसंद थे और जिनकी महज महक ही उसका मन और जीभ दोनों खराब कर देते थे। लेकिन मरता क्या न करता, रिदांश के कहने से मजबूरी में उसे करेले खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और वो अपनी मुंह नाक से कोड़ते हुए अपनी चम्मच से थोड़ा सा करेला अपने मुँह में रखती है, और जैसे ही उसकी जुबान पर करेले का स्वाद आता है वैसे ही वो मिचली लेने लगती है। लेकिन रिदांश के अगले शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह जाता। जाती है। रिदांश ने कॉफी की सिप के साथ न्यूज़पेपर देखते हुए कहा, अगर जरा सा भी खाना तुम्हारे मुंह से बाहर आया तो रिमेम्बर कि उसी खाने को तुम्हें वापस खाना होगा। आरना जानती थी कि रिदांश हमेशा वो करता है जो वो कहता है, और अगर वो आरना से ये बात कह रहा है तो वो ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब आरना के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो जबरदस्ती अपनी सांस रोकते हुए अपने खाने को निगलती है। रिदांश ने आरना की तरफ देखकर तंज के साथ कहा, आई होप वाइफी तुमने अपना नाश्ता अच्छे से एंजॉय किया होगा, और तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं चाहूंगा कि तुम्हें ऐसे हर वक्त में स्पेशल फील करवाऊं। रिदांश ने समांथा की तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए समांथा आज से मेरी वाइफी को ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में बस यही खाना दिया जाए। और अगर रिदांश ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, किसी ने भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की या फिर किसी के लिए ज्यादा ही हमदर्दी जागी तो वो भी तैयार रहे अपनी सजा के लिए, और साथ ही शायद फिर इसे एक बूंद पानी का मोहताज भी कर जाए वो। इतना कहकर रिदांश नाश्ते की टेबल से उठकर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। आरना उसके जाते ही जल्दी से पानी का ग्लास उठाती है और एक ही सांस में सारे पानी को अपने गले से नीचे उतार लेती है। आयुष और प्रीशा को आरना के लिए बुरा फील हो रहा था, लेकिन रिदांश की वार्निंग सुनने के बाद दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ जाए या उनकी जरा सी हमदर्दी की वजह से आरना और मुसीबत में फंसे। वहीं नम्या आरना की ऐसी हालत देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर कपूर हर तरफ से मायूस और निराश हो चुके थे। वो और राहुल पूरी कोशिश कर रहे थे अपने घर और बिजनेस को बचाने की, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो लोग भी अब ये बात समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। और अब फाइनली एक हफ्ते बाद इनके ऑफिस और घर की नीलामी थी। इन सब बातों से अनजान आरना अपनी ही उलझन में उलझी थी, और पिछले तीन दिन से रिदांश के ऑर्डर पर नाश्ते से लेकर डिनर तक उसे सिर्फ करेले ही सर्व किए जा रहे थे। आरना अभी भी अपने घर के हालातों से अनजान थी। हालांकि मिस्टर कपूर और राहुल ने उससे मिलने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन रिदांश की इजाज़त नहीं थी कि उन्हें घर में आने दिया जाए, और न ही इस बात का आरना को ही कोई इल्म था। नैना भी इस बीच आरना से नहीं मिल पाई थी जो वो उसे कुछ बता पाती। इधर कल्पना जी की नर्स के दो दिन से ज्यादा ही बीमार हो जाने की वजह से कल्पना जी को दोपहर का खाना और दवा आरना ही दे रही थी, और पहली बार था जब कल्पना जी रिदांश या सालों से काम कर रही उस नर्स के सिवा किसी और के हाथ से कुछ खा रही थी, बल्कि किसी और को अपने करीब आने की इजाज़त दे रही थी। इन सब बातों से अनजान रिदांश का पूरा ध्यान इन दिनों सिर्फ कपूर इंडस्ट्रीज की बर्बादी पर लगा हुआ था। आज भी आरना जब कल्पना जी को खाना देने के बाद और घर का सारा काम निपटाने के बाद वापस अपने कमरे में जाने लगती है कि उसे लिविंग एरिया में किसी की आवाज सुनाई आती है, और वो उस तरफ देखने के लिए बढ़ जाती है। और जब वो लिविंग एरिया में जाती है तो वहाँ करण को नम्या के साथ बैठा देख वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन करण की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। करण ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं आप? आरना ने बेमन से कहा, ठीक हूँ मैं। करण ने आरना को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आइए ना, आप भी बैठिए भाभी जी। आरना ने असहज होते हुए कहा, नहीं मुझे कहाँ है। करण ने नम्या की तरफ देखकर कहा, लगता है भाभी जी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नम्या ने कठोर भाव से कहा, ये कौन होती है जो इसके अच्छा लगने या ना लगने से हमें फर्क पड़े। ये घर कोई इसके बाप का नहीं बल्कि मेरे भाई और बाप का है, और इस नाते इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। करण ने कहा, हाउ स्वीट ऑफ यू। आरना वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है कि एक बार फिर करण उसे टोकता है, भाभी जी एक ग्लास पानी मिलेगा? आरना ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, लाती हूँ अभी। कुछ देर बाद ही आरना किचन से पानी का ग्लास लेकर वापस आती है और करण की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन करण जैसे ही जानबूझकर ट्रे में रखे ग्लास के पानी को उठाने के बहाने आरना के हाथ को अजीब तरीके से छूता है तो आरना अचानक ही हड़बड़ाकर अपने हाथ से ट्रे छोड़ देती है और पानी का ग्लास वहीं जमीन पर गिरकर टूट जाता है। करण ने गंदी सी मुस्कान के साथ कहा, उप्स, आराम से भाभी जी। नम्या ने गुस्से से कहा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, यूजलेस कहीं की, जाओ जाकर दोबारा पानी लेकर आओ। आर्ना ने नम्या की बातों को पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। नम्या ने गुस्से से आर्ना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आर्ना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी पर्सनल नौकर नहीं हूँ, और दूसरी बात, अभी कुछ देर पहले ही तुमने कहा था ना कि ये घर मेरे बाप का नहीं बल्कि तुम्हारे भाई और बाप का है, तो जाकर खुद अपने घर के काम करो, मैं क्यों करूँ? आर्ना ने गुस्से से करण की तरफ देखते हुए कहा, और ये तुम्हारा फियांसे है, और आई थिंक तुम्हारी इस लंबी जुबान के साथ ही तुम्हारे हाथ भी बिल्कुल सही सलामत है, तो जाकर खुद ले आओ। इतना कहकर आर्ना वहाँ से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, और नम्या गुस्से से उबलते हुए बस उसे खा जाने वाली नजरों से जाते हुए देखती रह जाती है।